हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनय वहां से निकलकर बाहर आया और अपनी कार में बैठ गया। मनस्वी और उसके बीच अभी-अभी जो बातें हुई थीं, उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा था। जो बात उसने मनस्वी से बोलकर आई थी, वो सब सच में एक सपने जैसा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसकी आंखें खुलेंगी और उसका और मनस्वी का इतने महीनों पुराना रिश्ता फिर से उसी तरह हो जाएगा। कार की स्टीयरिंग पर कसकर हाथ रखते हुए अनय अपने आप से बोला, डैम इट, पता नहीं क्या हुआ है इस लड़की को, क्या क्या बोल रही थी, हमारा रिश्ता, शादी और फिर ये किस, पता नहीं वो ये सब क्यों कर रही है, सच में या फिर कोई खेल, नहीं नहीं, ऐसा कोई खेल खेलने से उसे क्या फायदा होगा। उसके बाद अनय कार में बैठे बैठे काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा, लेकिन वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। उसका मनस्वी पर भरोसा करने का मन भी कर रहा था, लेकिन उसे इतने बड़े बदलाव के पीछे का कारण समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो थोड़ा कन्फ्यूज्ड था और उसे लगा कि उसे किसी की सलाह लेनी चाहिए। इसलिए कार स्टार्ट करने से पहले उसने अपना फ़ोन लगाया और आदित्य को कॉल किया। आदित्य कई दिनों बाद ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि अनय का कॉल आया। उससे बात करते हुए आदित्य ने उसे सीधा ऑफिस बुला लिया। सुनैना को आज किसी ज़रूरी काम से कॉलेज जाना था, इसीलिए वो आदित्य के साथ ऑफिस नहीं जा रही थी, वो पहले ही कॉलेज के लिए निकल गई थी। अनय से बात करने के बाद आदित्य अपने ऑफिस के लिए निकला और कुछ ही देर में पहुंच गया। ऑफिस पहुंचकर वो अनय के आने का इंतज़ार करने लगा। कॉल पर बात करते हुए अनय काफ़ी परेशान लग रहा था, लेकिन जब तक वो ऑफिस नहीं आया तब तक आदित्य ने सुनैना का नंबर डायल किया। पूरी बेल बजने के बाद भी सुनैना ने कॉल रिसीव नहीं किया। तब आदित्य को लगा कि वो किसी महत्वपूर्ण काम में व्यस्त होगी या लेक्चर अटेंड कर रही होगी, इसलिए उसने बार बार सुनैना को कॉल नहीं किया। कुछ देर बाद उसके कैबिन का दरवाज़ा खुला और अनय दरवाज़े पर नज़र आया, और जैसा वो फ़ोन कॉल कर साउंड कर रहा था उससे भी ज़्यादा वो सामने से देखने में परेशान लग रहा था। अनय दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और आदित्य की तरफ देखता हुआ वहीं खड़ा रहा। आदित्य ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, क्या हुआ है यार, यहाँ आकर आराम से बैठ जाओ और शुरू से लेकर अंत तक पूरी बात बताओ मुझे। कुर्सी पर बैठते हुए अनय अपना सिर पकड़कर एकदम परेशान होता हुआ बोला, क्या बताऊं यार और कहां से शुरू करूं, सच में कुछ समझ नहीं आ रहा, आज तो कुछ ऐसा हुआ है जिस पर मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा। अनय को इस तरह बोलते हुए सुनकर आदित्य समझ गया कि जरूर कोई बड़ी बात है जिससे वो इतना परेशान है। ये सब सोचते हुए आदित्य को अपने दोस्त की थोड़ी चिंता होने लगी। फिर उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो पानी पियो और थोड़ी देर रिलैक्स करो, फिर आराम से बताओ, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूँ। थैंक्स यार आदि, इतना बोलते हुए अनय ने आदित्य के हाथ से पानी का ग्लास ले लिया और पानी पीने के बाद जेब से रुमाल निकालकर अपने माथे पर आया पसीना पोंछने लगा। फिर कुछ देर बाद ठंडी सांस लेते हुए उसने आदित्य को वो सब कुछ बता दिया जो मनस्वी ने घर से निकलने से पहले कहा था। आदित्य ने कन्फ्यूजन से पूछा, अच्छा तो तुम दोनों ने किस किया इसलिए तुम ऐसा फील कर रहे हो या फिर कोई और बात है? आदित्य ने इसलिए ऐसा पूछा क्योंकि उसे उन दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। अनय अपने सिर के बाल नोचते हुए बोला, अरे यार आदि, तो इतनी आराम से ये बात कैसे बोल सकता है, तुझे पता है मेरे लिए ये कितनी बड़ी बात थी, और इसके अलावा उसका बर्ताव भी आज इतना बदला हुआ था, और तो और उसने हमारे रिश्ते को एक मौका देने की बात कही और साथ में हमें पति पत्नी भी कहा। आदित्य ने फिर से उसी लापरवाही से बोला, अरे यार कैसी बातें कर रहा है तू, आखिर तुम दोनों पति पत्नी ही तो हो, और एक मिनट, तुम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है क्या, और ये किस पहली बार था क्या? उसके इस बात पर अनय ने बहुत ही मासूमियत से हाँ में अपना सिर हिलाया। अनय की बातों का मतलब समझ में आते ही आदित्य एकदम सीरियस होकर पूछा, अच्छा तो ये बात है, ठीक है फिर बाकी सारी बातें छोड़ो और ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो, और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पत्नी सुधर सकती है? अनय तुरंत अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए बोला, सुधर सकती है मतलब, यार वो कोई क्रिमिनल नहीं है, और सच कहूँ तो उसने जानबूझकर आज तक ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, वो तो विराज है, वही उसे उल्टे सीधे तरीके बताता रहता था, लेकिन अब वो उसके साथ भी नहीं रहती। फिलहाल अनय ने अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए सारा इल्ज़ाम विराज पर लगा दिया। उसको इस तरह से मनस्वी को डिफेंड करते देख आदित्य उसकी तरफ देखता हुआ मुस्कुराया और बोला, इसका मतलब तुम भी वही चाहते हो जो वो चाहती है, तो फिर ठीक है ना, एक्सेप्ट करो और बात आगे बढ़ाओ और देखो अपने रिश्ते पर कैसे वर्क कर सकते हो। अरे लेकिन मैं तो ऐसा कुछ नहीं चाहता, और उससे पहले मुझे ये जानना है कि वो अचानक ऐसा क्यों कर रही है, आखिर उसके मन में ऐसा क्या आया। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है ये कैसे पता चलेगा? यार मुझे पता होता तो क्या मैं तुझसे सलाह मांगने यहाँ आता? नहीं पता तो फिर कैसे पता चलेगा? कैसे? उससे सामने बैठकर बात करने से, और फिर तुम्हें जो भी सही लगे वो करना। अगर उसकी तरह तुम भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हो तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि सब कुछ बहुत ईमानदारी से निभाना, क्योंकि अगर तुम्हारे रिश्ते में भरोसा और ईमानदारी होगी तो फिर वो रिश्ता जरूर वर्क करेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आदित्य ने अपने अनुभव के हिसाब से सलाह देते हुए कहा। उसकी बात पर थोड़ा सोचते हुए अनय ने भी हाँ में सिर हिलाया। इन सारी बातों के बाद अनय को इतना तो समझ में आ गया कि मनस्वी की तरह वो भी उसके साथ अपने इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता है, और वो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ फील करता है। आज सुबह मनस्वी की बातों और उसके किस के बाद से अनय को उसकी तरफ से भी काफी कुछ लग रहा है, इसलिए उसने घर जाकर उससे इस बारे में बात करने की ठानी। लेकिन जब तक वो आदित्य के साथ ऑफिस में था, वो उसी के ही काम में मदद करने लगा और आज अपने ऑफिस नहीं गया। दूसरी तरफ मनस्वी, आज सुबह उसने अनय से जो कुछ भी कहा वो सब कहने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन पर पड़ा हुआ बहुत भारी बोझ उतर गया हो। अब वो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। इसके अलावा वो भी उसी बारे में सोच रही थी और किस को याद करते हुए वो बार बार अपने चेहरे पर हाथ रख लेती और मुस्कुराती। वो उस वक्त एक होटल में थी। वो वहाँ किसी जरूरी काम के लिए आई थी, लेकिन साथ ही अनय के बारे में भी पूछताछ करने लगी, ये सोचकर कि शायद इसी बहाने उसे यहाँ पर अपने पति से मिलने का मौका मिल जाए। लेकिन रिसेप्शनिस्ट से बात करके उसे पता चला कि अनय अब तक वहाँ ऑफिस आया ही नहीं है। मनस्वी उसके बारे में सोचते हुए अपने आप से बोली, यहाँ भी नहीं आया तो फिर कहाँ जा सकता है ये? चलो कोई बात नहीं, कहीं भी गया हो लेकिन शाम को लौट कर तो वापस घर ही आएगा ना, तब बात कर लूँगी, देखते हैं आखिर कब तक भागते हो मुझसे तुम। शाम का वक्त, अक्षत का घर।
नैना कल अपनी शूटिंग काफी देर रात खत्म करके घर वापस आई थी। इन सब में उसे रात के 3 बज गए थे, लेकिन इसकी भरपाई उसे आज के आराम ने कर दी थी। वो अपने आराम का फायदा उठाते हुए आज पूरा दिन घर पर ही आराम कर रही थी। लेकिन फिलहाल इस वक्त अक्षत घर पर नहीं था, क्योंकि उसकी छुट्टी नहीं थी और वो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए गया हुआ था। लेकिन आज वो 6 बजे ही घर वापस आ गया। उसे इतनी जल्दी वापस आते देख नैना को थोड़ी हैरानी हुई। वो भागते हुए उसके पास आई और बोली, काफी जल्दी पैकअप हो गया आज तुम्हारे सेट का, तभी तो तुम भी इतनी जल्दी नजर आ रहे हो यहाँ। अक्षत सोफे पर बैठते हुए बोला, अरे हाँ काम तो जल्दी खत्म हो ही गया, लेकिन जल्दी घर वापस आने का आज एक और भी रीजन है। नैना ने शक भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। इतना थका होने के बाद भी ये बात बोलते हुए अक्षत काफी एक्साइटेड लग रहा था। अक्षत,
नैना कल अपनी शूटिंग काफी देर रात खत्म करके घर वापस आई थी। इन सब में उसे रात के 3 बज गए थे, लेकिन इसकी भरपाई उसे आज के आराम ने कर दी थी। वो अपने आराम का फायदा उठाते हुए आज पूरा दिन घर पर ही आराम कर रही थी। लेकिन फिलहाल इस वक्त अक्षत घर पर नहीं था, क्योंकि उसकी छुट्टी नहीं थी और वो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए गया हुआ था। लेकिन आज वो 6 बजे ही घर वापस आ गया। उसे इतनी जल्दी वापस आते देख नैना को थोड़ी हैरानी हुई। वो भागते हुए उसके पास आई और बोली, काफी जल्दी पैकअप हो गया आज तुम्हारे सेट का, तभी तो तुम भी इतनी जल्दी नजर आ रहे हो यहाँ। अक्षत सोफे पर बैठते हुए बोला, अरे हाँ काम तो जल्दी खत्म हो ही गया, लेकिन जल्दी घर वापस आने का आज एक और भी रीजन है। नैना ने शक भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। इतना थका होने के बाद भी ये बात बोलते हुए अक्षत काफी एक्साइटेड लग रहा था। अक्षत, प्लीज कुछ भी चीजी बात मत बोलना और ये तो बिल्कुल भी मत कहना कि मैं हूँ वो रीजन, क्योंकि मुझे पता है कोई और बात है जिस तरह से तुम एक्साइटेड हो। अक्षत थोड़ा बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, अरे यार मैं कोई एक्साइटेड नहीं हूँ, बस वो श्वेता है ना जो यहाँ पर ही रहने के लिए आई है, पास में घर है उसका, वो इतनी बार बुला चुकी है मुझे अपनी पार्टी में, इसलिए सोच रहा हूँ कि आज चला जाऊँ। नैना ने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालकर सोचा तो उसे याद आ गया श्वेता के बारे में। उसने कहा, श्वेता कौन? अच्छा वो घमंडी लड़की जो हमें उस मास्क पार्टी में मिली थी, उसने यहाँ पर घर ले लिया क्या? सच में वो भी कोई फेमस आर्टिस्ट है? क्योंकि मैं तो उसे इतना नहीं जानती, किस फिल्म में आई है वो?
अक्षत अब थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोला, अरे यार, तुम आम खाने से मतलब रखो ना, इस तरह पेड़ क्यों गिन रहे हो? चलो अच्छा, ये सब छोड़ो और जाकर अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट करो, क्योंकि हाउस वार्मिंग पूल पार्टी है तो उस हिसाब से ही ड्रेस कोड भी है, तो उसे ध्यान में रखकर पहनना, क्योंकि मैं वहां पर अकेला तो नहीं जाने वाला। इस बार नैना भी एक्साइटेड होते हुए बोली, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो, वैसे भी तुम अकेले जाते तो मेरा सारा ध्यान तुम पर ही लगा रहता, लेकिन अब हम साथ जाएंगे तो जरूर एंजॉय करेंगे। उसके एक्साइटेड होने के पीछे कई कारण थे। एक तो वो अक्षत को ऐसी पार्टियों में अकेला नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि वो इतना हैंडसम और आकर्षक है और उसे अकेला देखकर कोई भी लड़की उसकी तरफ आकर्षित हो सकती है। और इसके अलावा नैना काफी दिनों से किसी भी तरह की किसी पार्टी में शामिल नहीं हुई थी, इसलिए उसका भी पार्टी में जाने का मन कर रहा था। और अक्षत ने उससे इस बारे में पूछ लिया तो उसे तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई हो, और वो खुशी खुशी जाकर अपनी ड्रेस सेलेक्ट करने लगी आज की पार्टी के लिए। क्रमशः